Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
Namaste, Vaseem ji. Kaise hain?
Badhiya. Baki log kahan reh gaye?
Ji, aa rahe honge. Supriya ji, bahut bahut swagat hai aapka.
आज सबके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है क्या?
कुछ तो है वसीम जी, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई जुड़े ना। कुछ एक आध मिनट, अब तो कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया, थोड़ा सा इंतजार करते हैं।
हिमांशु जी आ गए हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं।
जी स्वागत है हिमांशु जी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं वसीम जी।
जी जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का बेहद खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कहानी बुनो। और आज है कहानी बुनो का 18वां एपिसोड। मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी। आज की कहानीकार निमिषा सिंघल जी हैं, मगर वो मौजूद नहीं है हमारे साथ। और बाकी हमारे अजीज व मोहतरम साथ में हैं, सबकी दुआएं हैं, तमाम सुनने वालों का ढेर सारा प्यार है। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं, सुनाते हैं छोटी छोटी मगर बेहतरीन कहानियां, जो हम या आप में से ही किसी की लिखी होती है। दोस्तों आज का टॉपिक है मन परिंदा। इस टॉपिक पर 5 कहानियां मिली। निमिषा जी की कहानी सेलेक्ट होने के बाद 2 कहानियां आईं, जिसमें एक विश्व दीपक जी की भी थी, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आने की वजह से मेल चेक नहीं कर पाया, तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। विश्व दीपक जी से हम माजरत चाहेंगे। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग अपनी अपनी उलझनों परेशानियों में मुबतला है। रोज रोज की मुश्किल भरी और भागती दौड़ती जिंदगी की हमवारियों से दो चार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें कहीं भी 2 पल का सुकून नहीं है। एक मुश्किल हल होती है तो दूसरी मुश्किल शुरू भी हो जाती है। कभी काम को लेकर कोई मुश्किल पेश आती है तो कभी रिश्तों को लेकर कोई खींचतान शुरू हो जाती है। कभी करियर को लेकर फिक्र में जिंदगी बेजार होने लगती है तो कभी आमदनी और खर्च को लेकर नामालूम सी दुश्वारियां दरपेश होने लगती हैं। ऐसे में कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस बोझिल दुनिया से कहीं दूर निकल जाए, जहां सुकून हो। जाहिर है अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि कहीं ना कहीं से सुकून तो मिले। आखिर सुकून किसे नहीं चाहिए भला? तो क्या यह मान लिया जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ देने वाली फितरत वाले मन परिंदा की ही कारस्तानी है, जो हमें इधर उधर भटकने पर मजबूर कर देता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे ये सवाल बड़ा ही पेचीदा है। वो इसलिए क्योंकि हम इंसान भी तो जमीन पर चलने वाले परिंदे ही है ना। दरख्त और शाखें बदल जाएं तो परिंदे को सुकून मिल ही जाए, ऐसा हर किसी के साथ तो मुमकिन है भी नहीं। हाँ, मगर इतना सुकून तो जरूर होगा ना दीपिका जी कि चलो हमने शाखें तो बदल ली। मन के परिंदा होने की सूरत क्या है और क्यों ऐसा लगता है कि मन कहीं भाग जाना चाहता है, यह अब भी रिसर्च का विषय है। लेकिन हम यहां तक तो पहुंच ही चुके हैं ना दीपिका जी कि मन परिंदा बनकर चाहे जहां भाग जाना चाहे, मगर वह कहीं पहुंच नहीं पाता। न जाने कैसी फितरत है इस मन की, जो उड़ना तो जानता है लेकिन कहीं पहुंचना नहीं जानता। मुझे सुनिधि चौहान का वो गाना याद आ रहा है, शायद आपको भी याद आ रहा हो, कि भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जाने।
जी
करीना को भी नहीं पता था कि उसका मन उसे कहां लेकर जाना चाहता है। मन की ऐसी फितरत की वजह से ही शायद हमारे महापुरुषों और धर्म गुरुओं ने कहा होगा कि मन चंचल होता है, इसलिए दुनिया भर में धार्मिक और आध्यात्मिक तौर तरीकों से मन को शांत करने के लिए तरह तरह के आयोजन प्रयोजन किए जाते रहे हैं। और हम सब जानते हैं टीवी के आयोजनों में देखते हैं या ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में देखते हैं, मगर पल में तोला पल में माशा की उधेड़ बुन वाली हम ख्याली में रहने वाला ये मन शांत कैसे रह सकता है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। लेकिन जैन धर्म गुरु आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं दीपिका जी कि मन चंचल नहीं होता। गौर कीजिएगा, मन चंचल नहीं होता। और क्या ही खूबसूरत बात है कि 300 पेज की उनकी किताब का नाम है किसने कहा मन चंचल है। इस किताब में इंसानी मन की जितनी भी कंडीशन हो सकती है, मैंने पढ़ी है ये किताब, इस किताब में इंसानी मन की जितनी भी कंडीशन हो सकती है, जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं, वो सब दर्ज हैं। और आचार्य महाप्रग ने अपने पुख्ता विचारों के जरिए ये साबित भी किया है कि सचमुच मन चंचल नहीं होता। उनका एक तर्क देखिए, वो कहते हैं कि अगर मन ने कहा कि अंगूर खाना है और आपने अंगूर खा लिया तो इसका अर्थ है कि मन ने आपकी इच्छा पूरी की। अगर मन चंचल होता तो अंगूर खाने की आपकी इच्छा पूरी ही नहीं करने देता, क्योंकि तब मन अपनी चंचला व्यवहार के चलते आपको अंगूर से हटाकर आम पर या अमरूद पर या लीची पर लेकर चला जाता। वैसे ये बात सच जान पड़ती है। फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारा मन परिंदा बनकर कभी इधर तो कभी उधर उड़ता क्यों रहता है? ऐसा भी तो होता है कि हमें अभी अंगूर खाने का मन कर रहा हो मगर अंगूर सामने आते ही मन बदल जाए। बहरहाल आज के एपिसोड के लिए मन के इस परिंदापन की कहानी लिखी है निमिषा जी ने, तो पहले सुनते हैं दीपिका जी की खूबसूरत आवाज में ये कहानी मन परिंदा।
जी वसीम जी, बस एक बात और कहना चाहूंगी कि मन की ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप तो यही है, वो जाने कहाँ कहाँ हो आता है ना। उसको ना अमीरी गरीबी दिखती है, ना जात पात, ना रंग रूप, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अमीर लोग ही दूसरे देश घूमें, गरीब का मन भी जाने सात समंदर पार जा सकता है। तो अच्छी बात है, मन परिंदा घूमता रहना चाहिए, और इससे आपको भी मुझे लगता है जिंदा दिली का एहसास हुआ रहता है। घूम के आए जहां मर्जी बिना पैसों के।
जी जी जी।
तो चलिए, आज की खूबसूरत कहानी लिखी है निमिषा जी ने, जिसका शीर्षक आप सबको अब तक पता ही चल गया है, मन परिंदा। अरे कल्लो, सुनती है या नहीं? सत्या के सांवले रंग के कारण सुनीता उसे कल्लो ही पुकारती थी। करम जली सारी की सारी आवाजें पी जाती है, आवाजें लगा लगा कर पेट की नसें दुखी जा रही हैं। आवाजें सुनकर भी जरा जो कानों में जूरेंगी हो, अभी जाकर खबर लेती हूँ इसकी। कानों में ठूठे लगाए मगन होगी अपनी दुनिया में, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में, वो और उसका संगीत बस। सत्या के माँ बाप महामारी के चलते स्वर्ग सिधार चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद सत्या अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहती थी। सुनीता रिश्ते में उसकी चाची लगती थी, उसे बोझ समझती थी और हर समय जली कटी सुनाया करती थी। वो तो सत्या की किस्मत अच्छी थी कि एक मिनट पहले ही वो वॉशरूम चली गई। सत्या को वहां ना पाकर सुनीता बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। सत्या जब 12 साल की थी तभी से अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके पापा का मोबाइल उसके पास उनकी निशानी था। उस फोन में उसके माँ बाप की फोटो पड़ी थी, जिन्हें देखकर अकेले में वो उन्हें याद किया करती थी। उस पल वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। उसके मम्मी पापा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक कथक नृत्यांगना बने, लेकिन उनकी मौत के साथ ही वह सपना उनके साथ ही चला गया। सपना जब 6 साल की थी तभी से कथक सीखा करती थी, और माँ बाप की मृत्यु के बाद वो आगे सीख ही नहीं पाई। इस फोन में उसके नृत्य के कई वीडियो पड़े थे जो उसके लिए ऊर्जा का काम करते थे। बस उन्हें देखते देखते उसका मन परिंदा बना जाने कहाँ कहाँ उड़ा जाता था। वो एक प्रसिद्ध कलाकार बनना चाहती थी। जब भी कहीं दूर गाने की आवाज सुनाई देती या वह अकेली रह जाती, उसके हाथ पैर तुरंत ही हरकत में आ जाते और कथक की अलग अलग मुद्राएं बना कुशल नृत्यांगना की तरह अभ्यास में जुट जाती।
नृत्य संगीत उसका जीवन था, उसके प्राण थे। वो एक समय खाना खाए बगैर रह सकती थी, पर नृत्य करे बगैर नहीं रह पाती थी। नृत्य करना उसके लिए एक नशे की आदत जैसा था। ना कर पाने पर वो बेचैन हो जाती थी और वो इतना सधा हुआ नृत्य करती थी, जो भी उसे नृत्य करते देख लेता मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। उसकी एक कजन थी जिसके छोटे मोटे काम वो कर दिया करती थी। उसके बदले में वह उसकी नन्ही मुन्नी इच्छाएं पूरा कर देती थी। रूपा दीदी, रूपा दीदी लाओ तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूं। रूपा उसे छुटकी बुलाती थी। हाँ छुटकी डाल दे, बहुत सिर दुख रहा है मेरा, कॉलेज के प्रोफेसर ने पढ़ा पढ़ा के सिर में दर्द कर दिया है। छुटकी जरा मेरे लिए एक कप चाय बना लाना। छुटकी जरा बाथरूम में गीजर ऑन कर दे। छुटकी जरा बिस्तर झाड़ दे। छुटकी ओ छुटकी जरा मेरे सूट पे प्रेस कर दे। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत काम छुटकी भाग भाग कर किया करती थी रूपा दीदी के कहने पर। सारा दिन घर में वो छोटे बड़े सभी का कुछ ना कुछ काम किया करती थी, जैसे कोई रिमोट से चलने वाला रोबोट हो। पर ये सब करते हुए भी उसका मन परिंदा कहीं और ही उड़ान भर रहा होता था। उसके कानों में ना दिन दिनता धा दिन दिनता धा दिन दिनता की धुन ही चलती रहती थी। रूपा से एक पुराने ईयरफोन सत्या ने ले लिए थे। आपके पास तो दो तीन ईयरफोन पड़े हैं दीदी, एक मुझे दे दो ना। अच्छा ले ले, रूपा ने कहा। रात को जब वह सोने जाती तब कानों में ईयरफोन लगा नृत्य के बोल सुना करती और फोन में कोई पुराना वीडियो चलाकर अभ्यास किया करती। दीपावली का समय था और चारों तरफ उत्सवों मेलों की भीड़ थी। रूपा के साथ सत्या भी मेला देखने चली गई। वहां की रौनक देखकर उसका मन पुलकित हो उठा। मेले में जगह जगह कंपटीशन हो रहे थे, कहीं नृत्य, कहीं मेहंदी, कहीं डेकोरेशन का। यह देख उसका मन भी मचल उठा। उसने रूपा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे इसमें हिस्सा लेने दे। रूपा तैयार हो गई। थोड़ी देर में सत्या का नाम स्टेज पर अनाउंस हुआ। सत्या ने प्रैक्टिस किया हुआ अपना कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आगे बैठे जज उसके नृत्य से मोहित हो गए। सत्या को ना विधिवत शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन सत्या को शिक्षा देने का उन्होंने मन बना लिया था। सत्या के नृत्य पर पंडाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने रूपा से उनके घर का पता पूछा और अगले दिन पहुंच गए उसके घर। जब उन्होंने सत्या की तारीफ की तो सुनीता को तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसके मन में एक बात आई कि चलो यहां से चली जाएगी तो पीछा छूटेगा। यह सोचकर उसने हां कर दी। सत्या के पैरों को तो जैसे पंख लग गए, उसका मन परिंदा बन उड़ने लगा। एक पल में जाने कहां से कहां पहुंच गया। रात भर सपने में भी उसे स्टेज, नृत्य और तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई पड़ रही थी। गुरुदेव के संगीत स्कूल में छात्रावास बना हुआ था और अनेक छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने दिन रात एक कर दिया। जो भी गुरुजी सिखाते अपने कमरे में आकर शीशे के सामने घंटों प्रैक्टिस करती। उसने बाल अवस्था में ही कई पुरस्कार जीत लिए। आज सत्या पहली बार अपने देश का प्रतिनिधित्व कर इटली में नृत्य प्रस्तुत करने जा रही थी। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। उसके माँ बाप का सपना पूरा हो रहा था। मोबाइल में अपने माँ बाप की फोटो पर प्यार कर परिंदा बन दूर देश की यात्रा पर चल पड़ी थी। इटली के सुंदर ख्वाब उसकी आंखों में चमक पैदा कर रहे थे। उसके पहुंचने से पहले ही उसका मन परिंदा बन उड़ा जा रहा था इटली की ओर। और उसके मन में एक ही धुन
बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें।
एक सपना। धन्यवाद।
बहुत खूबसूरत दीपिका जी, बहुत शानदार कहानी पढ़ाई आपने आज।
निमिषा
जी होती तो, निमिषा जी होती तो आपको ढेर सारी बधाइयां देती।
जी, उनकी वाकई कहानी बहुत खूबसूरत थी। हमें सच में अच्छा नहीं लग रहा कि वो हैं, बस किसी कारणवश उनका इंटरनेट का इशू है। उन्होंने पहले ही मैसेज किया था कि अगर वो रिजोल्व हुआ तो वो जुड़ पाएंगी, अन्यथा उन्हें भी दुख है कि आज वो जुड़ नहीं पाएंगी।
बहरहाल वो सुनेंगी इस रिकॉर्डिंग को, जब वो इंटरनेट उनका रिकवर हो जाएगा तो वो सुनेंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो सराहेंगी और अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम उनको।
जी दीपिका। तो वसीम जी, मैं लिसनर्स में कहना चाहती हूँ कि कोई अगर हमारे स्पीकर में जुड़कर इस कहानी के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया आप स्पीकर में जुड़ सकते हैं।
बेशक बेशक
जी,
कोई चाहेंगे इस कहानी के बारे में कुछ कहना, कैसी लगी, क्या कमी रह गई, क्या इसकी अच्छी बातें रह हैं? बहरहाल जब तक कोई आ रहा है दीपिका जी, तब तक जी, हम मानसून स्पेशल का अनाउंसमेंट कर देते हैं।
जी, इस बार तो अगर आप कहेंगे ना कि अगला टॉपिक दीजिए, तो वो टॉपिक नहीं है, पूरे महीने बारिश के मौसम का आनंद लेंगे हम कहानियों के जरिए, और वो भी आप सबकी कहानियों के, लिखी कहानियों के जरिए जो हमारे लिसनर्स हैं, हमें हर बार कहानियां भेजते हैं हर डिफरेंट टॉपिक पर। और इस बार मॉनसून जो आ रहा है, तो हमारा कहानी बुनो प्रोग्राम का अगला महीना मॉनसून स्पेशल मंथ होगा। चारों हफ्ते बारिश पर कहानी की कोई ना कोई टॉपिक दिए जाएंगे। तो मॉनसून में पानी की बौछारों के साथ कुछ सीली सी, कुछ फीकी सी, कुछ पहली बारिश की यादों और वादों से भरी कहानियां हमें लिख भेजिए, क्योंकि अगले हफ्ते का टॉपिक पता है वसीम जी क्या है?
तो मैं टॉपिक पूरे सप्ताह का टॉपिक ही बता देता हूँ।
नहीं नहीं, ये तो सीक्रेट है वसीम जी, पूरा नहीं बताएंगे। पहला टॉपिक बताएंगे जो कि है पहली बारिश।
जी, बहुत 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 बढ़िया टॉपिक आपने चुना है। और मुझे लगता है कि बारिश को लेकर जो रोमांस होता है ना, जो रोमांच होता है ना हर आदमी के अंदर, वो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बचपना, तो और भी मतलब उसमें भी रोमांच होता है। एक सबके पास अलग अलग तरीके की कहानियां होती हैं, सबके अपने अपने वो होते हैं, यादें होती हैं कि हम बारिश में किस तरह से भीगे थे, या अभी भी मन करता है कि जैसे अभी दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी भी मन करता है कि आज बारिश हो जाए और मैं छत पे चला जाऊं। तो बारिश की कहानियां तो अनगिनत हैं, है ना, और सबके मन में कुछ ना कुछ, सबके जहन में कुछ ना कुछ कहानियां होंगी। तो हम चाहेंगे कि पहली बारिश जो टॉपिक है, इस पर वो लिख भेजे कि किसी साल वो किसी पहली बारिश में भीगे होंगे, उसकी कुछ यादें होंगी, उससे रिलेटेड एक कहानी बुने और उस कहानी को बुनकर हमें भेज दें। 500 से 700 शब्दों के बीच हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com, kahanibuno@gmail.com।
और वसीम जी, जरूरी नहीं है कि पहली बारिश, कई बार क्या होता है कोई कोई बारिश ऐसी होती है जो आपको पहली बारिश जैसी लगती है।
तो जी दीपिका जी, और राजीव मिश्रा जी हैं, उनका
हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ सही,
क्या सिर्फ रोमांटिक कहानियां ही रखी जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो मेरा कहना है ना कि बारिश मुझे रोमांचित करता है, या हर आदमी के अंदर बारिश को लेकर एक रोमांच होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, बारिश को, पहली बारिश में कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जो किसी के दिल को छू जाए, कुछ अनहोनी हो सकती है, वो भी एक कहानी है, कहानी की शक्ल में या कहानी के उसमें अंदर कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि वो पहली बारिश की कहानी हो, पहली बारिश की यादों की कहानी हो, पहली बारिश से जुड़े कुछ ख्याल हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो लगे कि हाँ हम पहली बारिश को सुन रहे हैं, पहली बारिश को महसूस कर रहे हैं। और पहली बारिश वो रोमांस भी हो सकता है, वो दुख दर्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहानी तो कहानी है।
और कोई मजेदार वाक्या भी हो सकता है, कोई व्यंग भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की कहानी आप हमें भेज सकते हैं। तो हमारे साथ वसीम जी एक स्पीकर जुड़ी हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर शांभवी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं।
कहानी सुनी हो तो
जी। नमस्कार जी। हाँ, मैंने कहानी सुनी जब आप पूछ रहे थे फीडबैक, तो मैं इस अवस्था में नहीं थी कि मैं अपने आप को स्पीकर पैनल से जोड़ सकूं। मेरा मन भी बिल्कुल परिंदा की तरह उड़ रहा था, और इतने मैं लेखिका की बात कहूं या जिन्होंने कहानी जो सुनाई दीपिका जी ने, या आपने जिस तरह से उसको खत्म किया इतने प्यारे से गा करके, बिल्कुल बांवरा सा मन बिल्कुल उड़ रहा था। और सच बात कहूं तो मतलब कभी कभी होता है ना कि हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर कहानियां ऐसी सुनने को मिलती है जहां पे मतलब डर कि कुछ खराब हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ बुरा हो गया। और जब वो बच्ची 12 साल की थी या उसके माँ बाप गुजर गए और फिर कंपटीशन में गई, फिर इटली गई, तो वाकई में वो जा रही है, ये सपना है या सच है, ये मुझे डर लगा हुआ था कि क्या होने वाला है मतलब आगे। और मतलब अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। वो बच्ची जो है वो इतनी सबकी मदद कर रही थी, तो मतलब दिल की अच्छी थी वो, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत मायने रखता है। और शायद इसलिए कि मैं माँ हूँ, और ये बातें सच है हमारे लिए कि मतलब अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और क्या वो एक मोबाइल के सहारे हमें याद रखेंगे। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैंने कहा शायद क्योंकि मैं माँ हूँ और उस अवस्था में हूँ, और ये शायद सबका सच है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत। और उषा जी जितनी मैं आपको बताई और तारीफ तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उनकी तो अलग है, उनका स्टाइल अलग है, उनकी भाषा अलग है, पर मेरी तरफ से आपको बहुत बधाइयां, आपने इतनी प्यारी सी कहानी चुनी, हम सब तक इतने अच्छे अंदाज स्टाइल और इतने इमोशन के साथ आपने पहुंचाया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और कहानी
बहुत शुक्रिया सांभी मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया, और स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और आपने सही बात कही कि बहुत छोटी चीजें थी, और कहानी में जो हम यही चाहते हैं कि हमारी कहानियों में छोटी, एक तो कहानी छोटी है, कहानी का स्पेस छोटा है, 500 से 700 शब्द में लिखना है, तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजों पर, माइन्यूट चीजों पर ध्यान देना होगा कहानी लिखने में। और हम अपने लिसनर से यही बात कहते हैं, हम अपने लिसनर से यही बात कहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को उठाएं, वो बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा फलक रखती हैं अपने आप में, इसलिए छोटी कहानियों का फलक बहुत बड़ा होता है। कभी अब फिल्मी दुनिया में ये कहा जाता है कि हमें वन लाइनर दीजिए, यानी मुश्किल से 2 से 4 लाइन की एक कहानी होती है, वो इतनी ज्यादा क्लिक करती है कि उस पर 2 से 3 घंटे की, आप तो 8-8 घंटे की फिल्में बन रही है। तो बहुत छोटी चीजों पर ही कहानी लिखी जाती है, कोई बहुत बड़ा कैनवस नहीं है इस प्रोग्राम का, इसलिए हम चाहेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों को महसूस करें, शिद्दत से महसूस करें। और हमारा जो टॉपिक दिया जा रहा है, जो इसमें मेंशन किया जाता है, जो बताया जाता है कि क्या टॉपिक के इर्द गिर्द होने चाहिए, टॉपिक के इर्द गिर्द चीजें होनी चाहिए, तो उसको मिस ना करें, उसको जरूर उसमें फोकस करें, रखें, और इसी तरीके से कहानियां बुनते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें,
और अपनी
राय मशवरे वगैरह भी देते रहें।
जी वसीम जी, हमारे साथ एक और स्पीकर जुड़े हैं, आशु जी, तो अगर वो कुछ कहना चाहें तो स्वागत है उनका।
बिल्कुल स्वागत है उनका।
और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज की कहानी निमिषा जी की थी, एक क्वेश्चन भी आया था, और शांभवी जी आज निमिषा सिंगल जी ने कहानी हमें भेजी थी। तो अंशु जी, सॉरी आशु जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
थैंक यू जी टू ऑल, बिकॉज आई गॉट वन वर्ड्स फ्रॉम दिस मन परिंदा, रास्ता है सुगंधे जल्दी ही बदलेगा मंजिल, झांकले 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 अपने दिल के अंदर।
क्या बात, बहुत शुक्रिया आशु जी, आपका फीडबैक अच्छा है, एक संगीतमय फीडबैक मिला दीपिका जी हम लोगों को।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। तो अब प्रोग्राम के एंड करने का वक्त आ चला है, मुश्किल से एक से डेढ़ मिनट है, और हम चाहेंगे कि मानसून स्पेशल पे आप तमाम लिसनर्स सोचते रहें, महसूस करते रहें, और बारिश का इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं। तो कहानियां लिखें, लिखकर हमें भेजें। जैसे आज इस सप्ताह के लिए मन परिंदा के लिए 5-5 कहानियां आई, और हमें मुश्किल हो जाती है, कभी कभी बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं कि कैसे कहानियों को सेलेक्ट करें। बहुत पढ़ के बहुत इमोशन को खींचना पड़ता है, अपने आप को समझाना भी पड़ता है कि नहीं, दो अच्छी कहानियां दो में से कैसे एक सेलेक्ट करें। दिल पे पत्थर रख के एक को निग्लेक्ट करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे छोटी सी कमी रह जाती है। तो हम चाहेंगे किसी तरीके से धीरे धीरे कहानी लिखी जाए, लोग सीखें, समझें और कहानियां लिखते रहें, सुनते रहे मेंजा पर कहानियों का बेहद खास प्रोग्राम कहानी बुनो। जी दीपिका
जी जी, और ये एक बार हम फिर रिपीट करेंगे कि हमारा टॉपिक इस बार का है पहली बारिश, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको सब मैसेज बॉक्स में डाल दी है, चैट बॉक्स में, तो आप वहां से ईमेल आईडी देख सकते हैं हमारा। और एक बार आप वसीम जी दोबारा रिपीट कर दीजिए।
हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com, kahanibuno@gmail.com।
जी, और उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत कहानियां बारिश के टॉपिक पर, क्योंकि हमारा अगला पूरा महीना मॉनसून स्पेशल मंथ है कहानियों के लिए, तो हमें बहुत
जी, और मंडे तक कहानियां हमें भेज दें तो हमारे लिए सहूलत होगी उसको शॉर्टलिस्ट करने में और उसको एडिट करने में।
सभी लिसनर्स का और स्पीकर पैनल पे जुड़े हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अगले बुधवार 9 बजे मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद,
शुक्रिया।
इफ यू एंजॉयड दिस, डाउनलोड द मेंसा ऐप एंड स्टार्ट योर ओन लाइव ऑडियो कन्वर्सेशन।